نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مختصر صحیح بخاری میں سے آج ہم شروع کریں گے کتاب الوتر، وتر کا بیان. جو بک میرے پاس ہے اس کے مطابق پیج نمبر 366 ہے، باب پہلا ہے، لیکن حدیث کا نمبر 539 ہے. اور آپ انشاءاللہ اس باب میں بہت کچھ سیکھیں گے. ہم وتر کے بارے میں کچھ اور ہی کانسیپٹ رکھتے ہیں شروع سے، لیکن جب ہم اس پورے چیپٹر کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی. آئیے شروع کرتے ہیں. باب نمبر ایک ہے ما جاء فی الوتر، وتر کے متعلق جو وارد ہوئی، یعنی جو چیزیں حدیث میں ہمیں وتر کے بارے میں پتہ چلتی ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ اللیل. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز شب کے متعلق دریافت کیا. یعنی دیکھیں صحابہ کے سوال کیا ہوتے تھے کہ ہم رات کو کیا عبادت کریں، ہم کیا پڑھیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مسنا مسنا، رات کی نماز دو دو رکعت ہے. کیا پتہ چلا؟ یہاں سے آپ پہلی چیز اپنے لیے نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تہجد کا موقع دے، رات کو ہم قیام کریں تو دو دو پڑھنی ہے، چار نہیں پڑھ سکتے. یعنی نفل میں دو رکعت کر کے، دو دو کر کے آپ جتنی بھی پڑھ لیں گے لیکن دو دو ہوں گی. پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، پھر جب تم میں سے کسی کو خوف ہو صبح کا، مطلب کیا ہے کہ صبح ہونے والی ہے، فجر کی نماز قریب ہے، کیا کرے؟ صلا رکعتن واحدتن، تو پڑھ لے ایک رکعت. تو تھیرو لہو ما قد صلا، تو وتر بنا دے گی اس چیز کو جو اس نے پڑھی. بات سمجھ آئے؟ اب یہاں سے آپ کو لفظ وتر کی آج وجہ بھی سمجھ آئے گی. وتر کیا ہوتا ہے؟ کہاں پڑھا ہے قرآن میں؟ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وہاں وتر ہے. ہم وتر بولتے ہیں نا، لیکن اگر آپ دیکھیں سورہ فجر کی آیت ہے نا، والفجر وليال نشر والشفع والوتر، ٹھیک ہے. اب یہ جو فل وتر آئے نا، تو فی کی وجہ سے وتر بنتا ہے. بہرحال یہ وتر بولے یا وتر، معروف لفظ تو وتر ہے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے آڈ. آڈ کس کو آپ کہتے ہیں؟ جیسے ایک، تین، پانچ، سات. اس کو اور تھوڑا سا قریب لے کے جائیں نا تو وتر ایک کو ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ وتر ہے، خلاصہ ہے اس کا، کیا مطلب؟ اللہ ایک ہے. اب جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نماز وتر، تو ہمارے ہاں تو وہی معروف ہے نا، عشاء کی نماز کے بعد تین رکعت، یہ صحیح کانسیپٹ نہیں ہے. اس حدیث میں دیکھیے ساری رات میں جو بھی نفل عبادت ہوئی، دو دو کر کے، دو رکعت پڑھ لیں، چار پڑھ لیں، چھ پڑھ لیں، آٹھ پڑھ لیں، جو ہی آپ کو فیل ہو کہ آپ فجر کی نماز کا وقت قریب ہے تو ایک پڑھ لیں. اگر آپ نے آٹھ پڑھی تھی نا تو وہ ایک مل کر نو ہو جائیں گی، اگر آپ نے چھ پڑھی تھی تو یہ ایک مل کر سات ہوں گی. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سلام سے گیارہ رکعت تک پڑھی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے کانسیپٹ میں لوگوں کا ہے کہ وتر صرف تین ہی پڑھے جاتے ہیں اور عام طور پہ مغرب کی نماز کی طرح سے لوگ پڑھتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے. دیکھیں جتنی بھی ہیں دو دو کر کے پڑھتے جائیں، جب لگے کہ اب وقت پورا ہو رہا ہے، اب ہم نے نماز پوری کرنی ہے، فجر کا وقت قریب ہے، ایک رکعت پڑھ لیں. وتر ایک ہی ہوتا ہے. آپ دو نفل پہلے پڑھیں گے تو ایک وتر ملا تو تین رکعت ہو جائے گی. جب آپ اور میں تین وتر پڑھتے ہیں نا تو اصل میں دو نفل اور ایک وتر ہے. اس کا تھوڑا سا اور بھی کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وتر پسند ہے، آڈ پسند ہے. اب صبح میں فجر کے دو فرض ہوئے، ظہر کے چار ہوئے، عصر کے چار ہوئے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ دس. مغرب پڑھی تین، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ تیرہ. تیرہ سے دن کی باتوں میں آخری عبادت مغرب ہوتی ہے، روشنی میں جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ مغرب کے تین رکعتوں کی وجہ سے آڈ ہو گئی. رات کے اندھیرے میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ عشاء، اس کے چار ہیں، اس چار کو وتر کرنے کے لیے یہ وتر ساتھ پڑھا جاتا ہے. سمجھ آئیے بات؟ یعنی دن کی عبادات مغرب کے تین رکعتوں پہ آڈ ہو جاتی ہیں اور رات کی عبادات اس وتر کے ساتھ آڈ ہوں گی. بس اتنی سی بات ہے. اس سارے کے اندر یہ ذہن میں رکھیے کہ نماز وتر مستقل ایک نماز ہے جو عشاء کے بعد فجر تک رات کے کسی بھی حصے میں پڑھی جا سکتی ہے. اسے تہجد بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں اور تراوی بھی کہتے ہیں. یہ جملہ نوٹ کریں، یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں. اس کی کم از کم ایک رکعت، और ज़्यादा से ज़्यादा 13 रकतें हैं। अक्सर उलमा के नज़दीक नमाज वितर सुन्नत है जिसकी ताकीद की गई है। इस हदीस से दो बातें साबित होती हैं, एक ये कि रात के नवाफिल दो दो रकत करके पढ़ने चाहिए और दूसरी ये कि वितर की एक रकत पढ़ना भी साबित है। बात वाज़े हो गई है। नमाज वितर क़ियामुल लैल ही का दूसरा नाम है। कुछ भी नहीं रात को अब जाग सके ना तो एक वितर ज़रूर पढ़ लें। अच्छा, हमारे कल्चर में तो ईशा की नमाज के साथ ही पढ़ लेते हैं ना, और वो 17 रकते बनते भी तब है जब हम इसके साथ 3 रकत और 2 नफिल भी लोग बाद में शामिल करते हैं। नमाज ईशा के साथ वितर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बात वाज़ है। हाँ, ये रात की इबादत का एक आखिरी हिस्सा है। अब आगे अगली हदीस से पढ़ेंगे ना तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली इहदा अशरा रकअतन। हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद 11 रकात पढ़ा करते थे। अब नोट कीजिए ना, 11 रकते वितर पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे। कानत तिल का सलातुहू, यही आपकी नमाज होती थी। तानी बिल्लैल, यानी रात की नमाज। फयसजुदु सजदत मिन ज़ालिक क़द्र मा यक़्रउ अहदकुम 50 आया। इस नमाज में सजदा इस कदर तवील करते थे कि आप सर उठाने से पहले तुम में से कोई 50 आयतें तिलावत कर लेता। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह के नबी सल्लम का सजदा इतना लंबा था कि उसमें 50 आयतों की तिलावत हो जाए। नोट कीजिए, पढ़नी नहीं है क्योंकि सजदे में कुरान नहीं पढ़ सकते, लेकिन मिसाल दी गई है कि 50 आयतें पढ़ने में जितना वक्त लगता है उतना लंबा आपका सजदा होता था। क़ब्ल अन यरफ़अ रासहु, इससे पहले कि वो अपने सर को उठा ले। व यरकउ रकअतैन क़ब्ल सलातिल फ़ज्री, फिर वो पढ़ते 2 रकत सलात फ़जर से पहले। यस्तजउ अला शिक्क़िल अयमन, यस्तजउ कहते हैं लेटने को, अला ऊपर, शिक्क़िल अयमन दाई जानिब, हत्ता यहाँ तक कि यातियहुल मुअज़्ज़िनु लिस्सलात, यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन नमाज के लिए अज़ान दे देता। क्या पता चला कि फ़जर से पहले 2 रकत सुन्नत पढ़ते थे। ये जो 2 रकतें ये कौन सी है, फ़जर की 2 सुन्नतें हैं। और आपको पता है कि नबी सल्लम ने कभी भी ये रकतें नहीं छोड़ी थी, ना सफ़र में ना गैर सफ़र में। और उसके बाद ये जो लेटना था, ये कौन सा लेटना होता है अब समझिएगा। एक बंदा रात का उठा हुआ है, घंटा पहले उठ गया, अब उसने उठकर 8 रकतें भी पढ़ ली तहज्जुद की, फिर उसको वितर भी बना लिया, 9 कर ली, या 11 रकतें टोटल पढ़ी। इतने में मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी, अल्लाहु अकबर, अब 2 सुन्नत नबी सल्लम ने पढ़ी। वो शख्स जो घंटा डेढ़ से जाग रहा था, तो उसको एक फ्रेश अप लेने के लिए उधर ही अपने जाए नमाज पे दाईं करवट, ये देखिए, यानी दाईं का मतलब ये कि लेफ़्ट साइड आपकी ऊपर है और राइट साइड आपकी नीचे, तो जाए नमाज पे अल्लाह के नबी इस तरह से लेटते थे। वजह, फजर के फ़र्ज़ों के लिए। हम कहते हैं इतनी देर रह गई, ये 5 मिनट में हमने तो 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं। आपको तो अल्लाह के नबी की सबसे तवील किरत फजर में होती थी। सूरह क़ाफ़ पढ़ के देखें, अभी भी माशाल्लाह आप 26वें पारे में देखते हैं कितनी तवील सूरत है। तो आपकी फजर भी लंबी होती थी, इसलिए आप उससे पहले एक हल्की सी करवट लेते थे। अब सवाल पैदा होता है, हम तो अभी सो के ही उठे हैं, तो क्या हम भी सुन्नतों के बाद लेटें? बिल्कुल लेटें, सुन्नत समझते हुए। हमें थकन नहीं है, लेकिन हम ये सोचकर अपने आप को लेटाएंगे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटते थे, ये मुराद है। ठीक है, दूसरी रिवायत में कि रमज़ान या गैर रमज़ान में कभी 11 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे, अलबत्ता बाज़ों का 13 रकत भी साबित हैं, जैसा कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया। सुबह की सुन्नतें अदा करके दाई जानिब लेटना भी सुन्नत है, क्योंकि आप अच्छे कामों में दाई जानिब को पसंद करते थे। अभी तक जो बातें की हैं उसका ख़ुलासा करूँ। नंबर एक, वितर ईशा का हिस्सा नहीं है। वितर के ज़रिए अल्लाह ताला हमारी रात की इबादत को ऑड बना देते हैं। 2-2 करके रात की नमाज़ पढ़ी जाएगी। मैक्सिमम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 ही पढ़ी। अब आप देखिए कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि वही दीन का एक मरगूला क्यों बन गया आज। मरगूला समझते हैं, यानी रल मिल गया दीन। बाज़ मस्जिदों में 20 तरावियाँ भी होती थी और उसके फ़ौरन बाद क़ियामुल लैल भी शुरू हो जाता था, है ना। बाज़ जगह सिर्फ 5-6 मिनट ही बीच में 10 मिनट मिलते होंगे और क़ियामुल लैल शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह से बाज़ जगह लोग 8 तरावी भी पढ़ते हैं, बाद में उधर भी पढ़ते हैं। वल्लाहु आलम, मैं आपको अपना अमल बताती हूँ जो मुझे सुन्नत पढ़ने के बाद समझ आया। पढ़नी 8 ही हैं और 11, यानी 3 टोटल 11 पढ़ लें, लंबी कर लें, तवील कर लें, ताक रातों में अगर आपको लगता है कि मस्जिद में रात को आखिरी वक्त में नफिल होते हैं, आप शुरू में चार पढ़ लें या फ़र्ज़ पढ़ के छोड़ दें, आप वो आखिरी क़ियामुल लैल के आठ पढ़ लें। देखिए असल अजर जो है ना वो सुन्नत की इत्तबा है, क्वांटिटी नहीं चलती क्वालिटी चढ़ती है। इंडो पाक कल्चर है जिसके अंदर ये पूरा कुरान ख़त्म करना, आप अरब मस्जिदों में देखें जैसे सारे इस दफ़ा ये तौफीक मस्जिद में बैठे थे तो मोर्स माली ब्रदर्स हैं, तो मैं आदतन पूछ रही थी अच्छा आपकी इस मस्जिद में ख़त्म कुरान कब है, कहते हैं यहाँ ख़त्म कुरान नहीं होता, ये पाकिस्तानी मस्जिदों में होता है। राबता मस्जिद में जाके आप देखिए, मेरी अम्मी इस दफ़ा दुबई में थी भाई, अब वहाँ एक से खूबसूरत मस्जिद, पता ही कोई नहीं कि कुरान कब ख़त्म कब शुरू। कई ये मस्जिदें उसमें सिर्फ लंबी सूरत एक एक रकत पढ़ा देते हैं, कई में बिल्कुल छोटी सूरतें होती हैं, क्योंकि हमारे बच्चों ने और हमने शुरू से यही कल्चर देखा है ना, आज पहली तरावी है तो आज आखिरी, आज मिठाई का डब्बा और वो नमक पारे और लड्डू भी बटते हैं, तो कभी आप किसी अरब मुल्क में जाएँ तो उम्मीद ना रखें कि आपको उस दिन शक्कर पारे मिलेंगे, उधर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। नबी सल्लम का अमल, जब से मैंने ये चीज़ें खुद पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अपने उस्तादों से भी शेयर किया, मेरा अपना भी यही अमल है, पढ़नी 11 है मैक्सिमम, कुछ शुरू रात की पढ़ ले कुछ आखिर रात की पढ़ ले, या आपको लगता है कि मैंने रात को भी जागना है और इधर शुरू से सबके साथ पढ़ ही रही हूँ, 6 पढ़ के 2 छोड़ दें, वो 2 आखिरी रात में 1 घंटे में जाके 1 पारा पढ़ लें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये नफिल चीज़ें हैं। और अगली चीज़ हमने इसमें क्या देखी कि फजर की 2 सुन्नतों के बाद सुन्नत समझते हुए लेटना है और दाईं जानिब को ऊपर रखना है। अब आप देखिए कि इसको भी आज साइंस के साथ रिलेट करके देखें, जब एक बंदा खड़ा है 13 रकतें पढ़ रहा है तो उसका ब्लड लेवल नीचे आया होता है, हो सकता है कि एक बंदा इतना मुसलसल खड़ा रहने की वजह से एकदम उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, तो ये जो लेटना होता है ना थोड़ी देर, ये बॉडी के अंदर ब्लड को भी रोटेट करवा देता है। और दाईं करवट लेटते थे क्यों, आज साइंस आपको बताती है कि आपका दिल लेफ्ट साइड पे है, जब आप दाईं पे लेटते हैं तो दिल ऊपर आता है तो उस पर बोझ नहीं पड़ता, और उसके ऑपोजिट आप दूसरी तरफ लेटेंगे तो दूसरी तरफ होगा। साइड की बात है लेकिन ज़रूरी है, और हदीस पढ़ रहे हैं तो हमारा अमल होना चाहिए। और मैंने बच्चों को बहुत लोगों को देखा ऐसे, मना नहीं करते लोग, बिल्कुल उल्टे लेटना, पेट के बल लेटना, हदीस में आता है ये जहन्नमियों का लेटना है, पूरा चित ऐसे लेटना है जैसे ये आप देखें ना कि ये मेरा फ़ोन है इस तरह पड़ा हुआ है तो इसको मैं इसको यूं लिटा दूं, इस तरह लेटना कि पीठ ऊपर है। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि इस सूरत में हार्ट अटैक का इतना ज़्यादा ख़तरा है कि आपके ये पूरा बॉडी जो रिब्स जो हमारा बोझ है ना ये हड्डियों का होता है, हमारा ये पूरी बैक की हड्डी और सर का स्कल जब हम उल्टा होते हैं ना इसका बोझ हमारे दिल और पेट पर पड़ता है, ये बहुत ख़तरनाक है, बचपन से मना करें। और छोटे बेबी को भी कभी ना लिटाएं, ना बिल्कुल यूं लिटाएं ना बिल्कुल लिटाएं, ये तरीका है। आपको पता है कि मैयत को भी टेढ़ा करके लिटाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये सिर्फ हमारे चंद वक्तों के रिचुअल्स नहीं है, ये हमारी आदत डेवलप करते हैं। आप अपने बच्चों के सोने जागने को चेक करें और उनको प्यार से बताएं, अगर आप शुरू से उनको आदत नहीं डाली ना तो आहिस्ता आहिस्ता सोते में जाके उनकी करवट चेंज कर दें, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे नहीं डालें। कई लोग खराटे बहुत लेते हैं, उसमें भी यही रीज़न है, सोने को अगर सुन्नत के मुताबिक कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी सेहत भी होगी। जी
जी यहाँ पे कमल बता रही थी कि अगर सऊदीया में जाना 20 तरावी वो पढ़ाते थे साथ में कमल लैल भी
जी, उसकी वजह देखिए कि ये चीज़ बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ भी होती है, हमेशा देखिएगा कि 2 इमाम मुख्तलिफ पढ़ाते हैं, जो पहली पढ़ते हैं वो दूसरी नहीं पढ़ते, लोगों के रश को मेंटेन करने के लिए होता है, हमने खुद वहाँ रमज़ान में पढ़ा हुआ है, यानी वो एक किस्म की ऑप्शंस मिल जाती हैं, हम वहाँ भी जाते हैं तो यही करते हैं। आपका जिसके साथ दिल करे, शुरू वाले के साथ 2 पढ़ लें, दूसरी दूसरे के साथ पढ़ लें, तीसरी तीसरे के साथ पढ़ लें, तो लेकिन वहाँ इसको मेंटेन करने के लिए पढ़ाया जाता है, मोस्टली लोग यही करते हैं वह ना जी। तो बाकी देखिए रमज़ान में हम एक तरावी भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके साथ आप देखिए कि हम फिर 8 रकत फिर भी क़ियामुल लैल के पढ़ते हैं, तो रमज़ान के बाद क्या होगा, फ़र्क है ना। तो बस वही बात है कि कल्ला बदल्ला, अल्लाह के नबी से पूछा क्या कहता है कि अल्लाह ताला को कौन से अमाल पसंद है, तो आपने फरमाया कि अदवमुहा अदवम के दवाम एवरलास्टिसिटी इन कल्ला, अगरचे वो कलील ही हो करते तो रहें, बाद में अब पता चला कि फरिश्ते कहेंगे रमज़ान में तो इनकी 20 जमा 8 और भी उसके बाद 3 बेहतर, ये तो कोई 35 तरावियाँ बन जाती थी क़ियामुल लैल के नाम पे, तो आजकल शायद 2 भी नहीं है। तो ये हर चीज़ हमारे माइंड के साथ बहरहाल कंट्रोल होती है। आगे चलते हैं 7 तुल वितर। अब ये बहुत अहम है कि वितर पढ़ें कब, نماز وتر کے اوقات کیا ہے؟ وانہا، انہا سے کیا مراد ہے؟ اوپر جن کا ذکر تھا، یعنی حضرت عائشہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہا قالت کل اللیلی اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے ہر حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وتر ادا کی، وانتہا وترہ الی السحری، مگر آخر میں آپ کی نماز وتر آخر شب میں ہوتی تھی. کیا پتہ چلا؟ یہ پوری رات پڑھی، کبھی شروع میں، کبھی مڈل میں، کبھی آخر میں، لیکن جو آپ کا پسندیدہ وقت تھا یا اپنی زندگی کے آخری حصے میں جو آپ نے کیا، وہ فجر سے پہلے کا وقت تھا. ٹھیک ہے، کبھی سفر میں ہوتے تھے، کبھی بیمار ہیں، جنگوں پہ ہیں، تو مختلف حالات کے پیش نظر مختلف اوقات میں وتر ادا کیے. اس میں کیا پتہ چلتا ہے؟ امت کی آسانی، سہولت کے لیے ایسا کرنا ہے. اچھا، آپ کو یہاں جواب مل گیا کہ وتر کب پڑھیں، کس طرح پڑھیں، کیا کریں. آگے بھی حدیثیں آنی ہے، میں آپ کو سمپل سی طریقہ بتاؤں کہ دا بیسٹ تھنگ تو یہ ہے کہ فجر سے پہلے پڑھیں. ٹھیک ہے، جب آپ کو فیل ہو رہا ہے فجر کا وقت قریب ہے. لیکن اگر آپ کو ڈر ہے، خطرہ ہے کہ آپ اٹھیں گے نہیں، تو آپ رات کو پڑھ لیں. اب آپ پڑھ چکے ہیں رات کو، لیکن آپ پھر اٹھ کے تو نفل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ رات آپ پوری ہو گئی، اب یہ آپ کی اس کے ادھر میں ایڈ ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ایک رات میں دو دفعہ وتر نہیں پڑھ سکتے. ہمارے پاکستان میں ایک بڑا معروف مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ رات کو وتر پڑھ لیے، اچھا جی اب سحری میں اٹھ گئے، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں پہلے ایک اور رکعت پڑھو، پھر وہ ایک اور یہ ایک دو مل کے دو ہو جائیں گی، بعد میں تہجد پڑھو اور اینڈ پہ پھر آپ لوگ پڑھیں، پھر دوبارہ وہ پڑھیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لیجل آخر صلاتی وترن، چاہیے کہ اپنی آخر نماز کو وتر کو بنائے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلو آخر صلاتکم باللیل وترن، اے لوگو تم رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ. یعنی پسندیدہ عمر یہی ہے کہ آخر میں وتر پڑھیں. اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر میں دو رکعتیں بھی پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ وتر کے بعد پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے اور آپ نے اس کی رغبت بھی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو رکعت کو بیٹھ کر ادا کرتے تھے، لیکن ہمیں کھڑے ہو کر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بھی پوری نماز کا ثواب ملتا تھا. یہ رعایت امت کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ نا کہ بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہوتا ہے، تو لہٰذا بیٹھ کے پڑھنے کا موقع ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو زیادہ اجر ہوگا. باب الوتر علی الدابت، سواری پر وتر پڑھنا. ونہو رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر علی البعیر، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہو کر وتر پڑھ لیا کرتے تھے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وتر واجب نہیں، اگر ایسا ہوتا تو سواری پر ادا نہ کیے جاتے. سمجھ آ گئی آپ کو کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوگا؟ اب اس کو سمجھیں کہ سواری پر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. اس کے لیے آپ اور میں اس کو سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر وتر بیٹھ کے پڑھ لیا کرتے تھے. فرض نماز بیٹھ کے نہیں ہوتی بغیر کسی عذر کے، تو لہٰذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وتر فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے اور بیٹھ کے ادا کیجیے. اس میں ایک اور طویل حدیث بھی آتی ہے کہ ایک صحابی تھے، تو وہ سفر میں تھے، پھر سواری روکی اور سواری سے نیچے اترے اور نفل پڑھے یا وتر پڑھا. کسی اور نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نفل پڑھے. تو انہوں نے کہا کہ تم ابو القاسم کی مخالفت کر رہے ہو. کیا مطلب؟ کہا میں نے تو اللہ کے نبی کو نفل سواری پہ پڑھتے دیکھا، تو تم نے اترنے کا تکلف کیوں کیا؟ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سنت سمجھتے ہوئے جب ہم کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس میں زیادہ اجر ہے. عقل تو کہتی ہے نا مشکل ہو سواری روکو بیٹھو پھر پڑھو کھڑے ہو جاؤ، بعض صفحہ حالات کے مطابق سواری پہ پڑھنا زیادہ اجر کا ذریعہ ہے. مثال ہے 10 لوگ جا رہے ہیں اور ایک بندے نے اگر نماز نفل پڑھنی ہے وہ روکتا ہے، آپ اس کے لیے گاڑی روکی، چلو جی نفل پڑھ لو. تھوڑی دیر بعد دوسرے کا دل کیا تو وہ بار بار گاڑی روکتی رہے گی نا. تو بہتر ہے کہ وقت اور سہولت کے مطابق کمفرٹیبلی آپ اس چیز کو کرتے رہیں. سنت اور نفل فرض نہیں کسی قسم کے بھی. ٹھیک ہے، پھر القنوت قبل رکوع و بعد، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو بھی غور سے سمجھیے. اس میں بھی ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا موسٹلی پاکستانی انڈین لوگوں کا. کیا ہے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد قنوت کا وضو بیان. ان انس رضی اللہ عنہ انہ سئلا اقنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صبحی قال نعم فقیلا اب قنت قبل رکوعی قال قنت بعد رکوعی یسیرا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں قنوت پڑھی ہے. انہوں نے جواب دیا ہاں. پھر پوچھا گیا क्या रकू से पहले आपने कुनूत पढ़ी है? उन्होंने कहा रकू के बाद थोड़े दिनों के लिए। अब इस हदीस में कनूत वितर का जिक्र नहीं बल्कि ये कनूत नाजिला है। इमाम बुहारी ने यह क्यास किया कि जब फ़र्ज़ नमाज कनूत में पढ़ना जायज़ हुआ तो वितर में बतरीके उला जायज़ होगा। महल कनूत के मतलब निसाई में वजाहत है कि वितरों में कनूत रकू से पहले है और मुस्लिम की रिवायत में कनूत नाजिला रकू के बाद है। अगर वितर में दीगर अदिया भी शामिल कर ली जाएँ तो इसे भी रकू के बाद पढ़ना चाहिए। सूरत दीगर कनूत वितर रकू से पहले है। अब ये सारा कुछ एक दो रिवायतें और है वो पढ़ के मैं आपको अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करती हूँ। अगली रिवायत के वन हो रदी अल्लाह सुईलानिल कनूती वक़द कानल कनूतु फ़कील लहू कबल रकू या उबादहू क़ाल कबल हु क़ील फ़िन फ़लान अखबरान कन्न का कुलत बाद रुकू फ़काल कज़बा इन्नम कनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद रकू शहरन। हज़रत अनस से रिवायत है कि कनूत के मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि बिलाशुबा कनूत पढ़ी जाती थी, फिर दरियाफ़्त किया गया कि रुकू से कबल या रुकू के बाद। उन्होंने कहा रुकू से कबल। फिर जब इनसे कहा गया कि फ़लाँ शख्स तो आपसे नकल करता है कि आपने रुकू के बाद किए, अराहु काना, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बोले कि वो गलत कहता है क्योंकि अराहु उन्होंने देखा काना बास कौमन जो क़ालु लहुमुल क़ुरा कि रसूलुल्लाह ने ये भेजा एक कौम को जिनको कारी कहा जाता था जुहा सबीन रजुलन जो 70 लोग थे, बहुत ही कौम के बड़े हुए लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई थी। इला कौमी मिनल मुशरिकीन दून उलाइका वकान बैनहुम व बैन रसूलिल्लाहि अहदुन फ़क़नत रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरन यदूल अलैहिम। क्या हुआ कि कहा कि रसूलुल्लाह ने सिर्फ़ एक महीना रुकू के बाद कनूत पढ़ी और मेरा ख्याल है कि आपने मुशरिकीन की तरफ तकरीबन 70 आदमी भेजे जिन्हें कारी कहा जाता था। ये मुशरिक इन मुशरिकीन के अलावा थे जिनके और रसूलुल्लाह के दरमियान मुआहदा सुलह था। रसूलुल्लाह ने दुआ कनूत पढ़ी और एक माह तक इनके लिए बददुआ करते रहे। इन्हीं से एक रिवायत में यह है कि रसूलुल्लाह ने एक माह तक दुआ कनूत पढ़ी और कबीला राल और जुकवान के लिए बददुआ फरमाते रहे। तो क्या पता चला कि हंगामी हालात के पेश नज़र हर नमाज में कनूत की जा सकती है। और यह भी पता चला कि जुल्म पेशा लोगों पर नमाज में बददुआ करने से नमाज में कोई खलल नहीं आता। एक और रिवायत अनहु ऐदन काला अल कनूत फिल मगरिबी वल फजरी, हज़रत अनस से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि कनूत मगरिब और फजर की नमाज में पढ़ी जाती है। नमाज मगरिब चूँकि दिन के वितर हैं, बात वाज़े दिन के वितर हैं और इसमें कनूत करना साबित है, तो रात के वितरों में कनूत बिलऊला की जा सकती है। और इसके अलावा वितरों में कनूत करने की सराहत यानी वजाहत अहदीस में मौजूद है। अब ये सारी चीज़ को जमा कर लेते हैं तो क्या समझ आता है, इसको समझेंगे हम लोग। आप देखिए कि एक वो है जिसको हम दुआ कनूत के साथ जोड़कर वितर के साथ पढ़ते हैं, आम नमाज जो डेली आम तौर पर हम करते हैं, ये तो हम पढ़ेंगे रात को ही जैसे हम बात कर रहे हैं। अब इसमें एक सवाल रह जाता है कि रुकू से पहले या रुकू के बाद। नबी सल्लम ने दोनों तरह से पढ़ा। नमाज नबी हमने जब पढ़ी थी तो उसमें पूरी बहस थी, उसके बाद से मैंने अपने अमल में यही रखा हुआ है कि मैं रुकू से पहले पढ़ती हूँ। कभी बिल फर्ज मे बी वंस अ वाइल्ड पहले पढ़ना भूल गया और अब रुकू में चले गए तो मैं बाद में भी पढ़ लेती हूँ, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन उस पर उन्होंने ये साबित किया था कि रुकू से पहले पढ़नी ज़्यादा ऑथेंटिक है बाद में पढ़ने से। बहरहाल दोनों में पढ़ेंगे। अब ये बात ख़त्म हो गई। दूसरी सूरत है कि दुनिया में किसी जगह मुसलमानों पर जुल्म होता है, नॉन मुस्लिम हैं, कुफार हैं, वो मुसलमानों पे ज़्यादती करते हैं, कोई किसी जगह काटा गया मारा गया, तो ऐसे लोगों पे जाके देखें हम ना तो तीर चला सकते हैं ना तलवारें, लेकिन हम बददुआ कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही। ये दो कबीले हैं, आपको वाकया याद होगा सीरत का, हमने पढ़ा था सूरत माईदा में भी इसका जिक्र है। इन लोगों ने 70 लोगों को बुलवाया था कि तबलीग के लिए हमारे पास आएँ, जब आए तो उन्होंने बहाने से उनको कत्ल कर दिया। तो अल्लाह के नबी को इतना दुख था कि आपने एक महीना तक उन पर बददुआ की। उस कनूत को कनूत नाजला कहते हैं। वो कब किया जा सकता है? फजर में भी किया जा सकता है, मगरिब में भी, बल्कि यहाँ आपने पढ़ा कि किसी भी नमाज में, और ये इज्तमाई नमाज़ों में होता है, मसलन मस्जिदों में इमाम वक्त का जब वो करे, और ज़ाहिर है कि उसमें मिसाल है कि नाम लेके अगर कोई कहता है कि अल्लाहुम्मा अलैका बिशहूद या अल्लाहुम्मा अलैका बिलहनूद या अल्लाहुम्मा अलैका फलां, तो ये कहा जा सकता है, ये सुन्नत है। अब लोग कहेंगे हाय क्यों आप उन पर बददुआ कर रहे हैं, तो आप तो सिर्फ बददुआ कर रहे हैं, उन्होंने तो लोगों को गाजर मूली की तरह काटा है, ठीक है। तो कनूत और कनूत नाजला का ये फ़र्क है, बात वाज़े हो गई है जी। आप प्लीज़
कनूत
कल बात कर रहे थे कि काफ़ी चीज़ें जो हदीस से नहीं मतलब फॉलो की जाती इधर, तो इसी तरह हम लोग भी एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें जो वितर का तरीका इमाम पढ़ा रहे थे वो वही तरीका जो वकीफ़ का है ना, कि दूसरी दफ़ा भी वो तशहुद पढ़ते तो तीसरी दफ़ा भी ना, तो क्या उनके पीछे फिर नमाज़
ये
पढ़ना।
बहुत अच्छा सवाल है कि आप किसी ऐसी मस्जिद में जिनके बारे में आपका गुमान है कि वो नमाज़े मगरिब की तरह वितर पढ़ेंगे, तो आप क्या करें? दो सूरत हाल है, आप ना पढ़ें, बाद में अपना पढ़ लें, क्योंकि वो फ़र्ज़ तो नहीं है ना। ठीक है, दूसरी सूरत आप देखिए कि इमाम साहब 3 रकत पढ़ रहे हैं ना, बीच में वो बैठेंगे, आपको लग रहा है, आप ना बैठें उनके साथ, आखिरी रकत में उनको ज्वाइन करें। तो बस एक नियत कर ले, इमाम की नियत आपसे फ़र्क हो सकती है, तो बस आप एक आखिरी रकत उनके साथ पढ़ लें। ठीक है, लेकिन यह कि अगर बिलफर्ज़ आपको कुछ भी नहीं पता था और वो पढ़ने लग गए, तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम मुकर्रर इसलिए किया जाता है कि उसकी पूरी की पूरी इक्तदा की जाए। तो इमाम कुछ और करे, आप कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।